नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2032 तक दोगुना करके 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर बुनियादी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए हस्ताक्षर किए गए। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों देश भारत में एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने पर सहमत हुए।
व्यापार के मोर्चे पर 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से द्विपक्षीय व्यापार 100 मिलियन डॉलर को पार कर चुका है। इसे देखते हुए दोनों नेताओं ने महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का फैसला किया। दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 200 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।
विदेश सचिव ने बताया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने तेल तथा गैस से जुड़े समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पोलैंड को आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए और भारत के पड़ोसी देशों में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादस्वाव शिरकोस्की के साथ नई दिल्ली में बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के समय में अमरीका और फ्रांस में उन्होंने यूक्रेन संघर्ष तथा उसके प्रभावों के बारे में भारत का दृष्टिकोण साझा किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना लगातार प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन मास्क लगाने का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि यह विकास भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को चालू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष बनना तय है। पार्टी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी के लक्ष्मण ने बताया कि इस पद के लिए केवल नितिन नवीन का नाम प्रस्तावित किया गया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की औपचारिक घोषणा आज की जाएगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी, मनोहर लाल और जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में एक अंतर मंत्रालय बैठक में भाग लिया। श्री यादव ने बताया कि इस दौरान शहरों में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए पुराने डंप साइटों से निष्क्रिय सामग्री को दोबारा उपयोग में लाने पर चर्चा की गई। श्री यादव ने कहा कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के प्रयासों के बाद आयोजित की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा यानी 14 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। अधिकारियों का दावा है कि SIR का काम बाधित नहीं हुआ है। हालांकि विभिन्न जिलों से कई हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आई हैं। राज्य में चल रही प्रक्रिया की विशेष निगरानी आज से शुरू होगी, जिसकी देखरेख राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल मतदाताओं के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय विशेष गहन पुनरीक्षण में मनमानी और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने हवाई किराए में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि पर चिंता जताई है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विमानन कंपनियों द्वारा हवाई किराए में की गई अत्यधिक बढ़ोतरी को यात्रियों का शोषण बताया है। दक्षिण गोवा के निवासियों और पर्यटन क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि डेबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागरिक उड़ानों के लिए पूरी तरह से चालू रहेगा। रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के बीच दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने कल दावोस में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के पहले दिन रिकॉर्ड 14.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर किए गए 19 समझौता ज्ञापनों में से अलग अलग क्षेत्र में 15 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। खेलो इंडिया गेम्स के शीतकालीन सत्र का पहला चरण आज से लद्दाख के लेह में शुरू हो रहा है। इस संस्करण में कोच और तकनीकी सहायकों समेत 1000 से अधिक पुरुष तथा महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।